ओम शांति। आज हम सबका परम सौभाग्य है, हम सभी के मध्य आदरणीय भ्राता रमेश जी शाह उपस्थित है। हम सभी करतल ध्वनि के द्वारा इस सभा के बीच में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी मैं दैवी भ्राता जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। भ्राता जी, आप इस यज्ञ के वरिष्ठ तीन भ्राताओं में से आप एक भाई जी हैं। आप तीनों वरिष्ठ भ्राताएं इस यज्ञ के पिलर से आप स्वराज्य अधिकारी नूरे रत्न बाप दादा के देदीप्यमान नक्षत्रों में से पद्मा पदम भाग्यशाली साकार मम्मा बाबा की पालना से पले परमात्म दुआओं से संपन्न अलौकिक प्रेरणादायी अनुभव की जीवन पुस्तिका से चलते फिरते अनेक आत्माओं को मार्गदर्शन करने वाले आपके शीतल दृष्टि से शीतलता तथा अपनापन बरसता है। आपका अनमोल जीवन ईश्वरीय परिवार का इतिहास के दर्पण समान प्रतीत होता है। आपके बाप दादा के साकार पालना के अनुभव को सुनते सभी प्यार भरी यादों में खो जाते हैं। मन बुद्धि के पंखों से उड़कर बाप दादा की प्यारी पालना भरी गोद का रसास्वादन करने लगते हैं। आप मुंबई के रहने वाले, आपकी लौकिक पढ़ाई बीकॉम एलएलबी एफसीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप ब्रह्म कुमारी वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप जूरिस्ट विंग के चेयरपर्सन हैं, ब्रह्म कुमारी एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑनररी सेक्रेटरी हैं, आप स्पार्क विंग के चेयरपर्सन हैं, आप आर्ट एंड कल्चरल विंग के डायरेक्टर हैं, गॉडलीवुड स्टूडियो के भी आप और उषा दीदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी आप गॉडलीवुड स्टूडियो के चेयरपर्सन हैं, आप रेडियो मधुबन के भी सेक्रेटरी हैं, आपने यज्ञ के सारे अकाउंट्स के चीफ एडिटर हैं। इतने बिजी होते हुए भी आप कई बुक्स भी लिखे हैं, जैसे पवित्र धन, पुरुषोत्तम संगम युग, ऐसे अनेक सारे बुक्स भी लिखे हुए हैं। आपको यूके और यूएसए से कई अवार्ड मिले हुए हैं। ऐसे और भी अनेक खूबियों के धनी, जैसे कहा जाता है कि चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया, ऐसे आपने ज्ञान सागर को हप करके आप मास्टर सागर बन करके इस विशाल यज्ञ के अनेक कारोबार संभालते हुए भी, इतने व्यस्त रहते हुए भी आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे मध्य उपस्थित है। इसलिए फिर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। आपका विषय है बाबा और ड्रामा, इस पर हमें प्रकाश डालेंगे। अभी हम आदरणीय दैवी भ्राता जी को सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। बहन जी ने कहा मैं भाई जी का संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। ये संक्षिप्त में था या लंबा था मुझे मालूम नहीं है। संक्षिप्त में तो इतना ही होता है कि रमेश भाई एक आत्मा है परमात्मा के संतान है, ये संक्षिप्त परिचय है, हम सबका है, सब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं सबका यही परिचय है, सच्चा परिचय यही है। बाकी तो लंबा चौड़ा शरीर के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से रहता ही है। आज किस टॉपिक पर कारोबार करें, पहले मैंने सोचा था आज मुरली नहीं, जब कल सुबह मैंने सोचा था मुरली नहीं होंगे तो अच्छा कोई भी टॉपिक नहीं होगा तो बहुत ही अच्छा होगा। एक बार मैंने हमारी लौकिक युगल जो थी उषा, उसका परिचय मेरे एक मित्र को कराया, तो मैंने उनको कहा कि मेरी वाइफ उषा जो है कोई भी टॉपिक पर 2 घंटा बोल सकती है। तो मेरे दोस्त ने कहा उसमें क्या बड़ी बात है, मेरी वाइफ तो जो है ना बिना टॉपिक 4 घंटा बोल सकती है। तो मैंने भी सोचा कि आज कोई बिना टॉपिक होगा तो मैं 4 घंटा आराम से बोल सकूंगा। तो रात को फिर बहने आई, कहने लगी नहीं टॉपिक तो आपको रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा बिना टॉपिक रखो, कहा नहीं रखो टॉपिक रखो। तो मैंने उस टाइम पर मैं भोजन कर रहा था, तो मैंने भोजन करते करते बता दिया कि ठीक है बाबा और ड्रामा उसके ऊपर रखो। फिर रात को हमने मुरलियां पढ़ी तो देखा तो आज की मुरली, कल की जो मुरली है मैंने नोट करके लाया है। कल की मुरली जो अव्यक्त मुरली सुनी वो ओरिजिनली 15 दिसंबर 2011 की थी, 15 दिसंबर 2011, और वो रोजरी में भी आ गई है, सब जगह पर गई है। आप उसी मुरली के हिसाब से पढ़ना और क्लास कराना तो हो सकता है। गुलजार दादी का चित्र जो है टीवी पर 7 बजे आया, 7:01 के वो बाबा के पास गई, 7:03 जो है बाबा की प्रवेशता हुई, 7:08 तक बाबा ने दृष्टि दिया और उसके बाद मुरली चलाना शुरू किया, और 7:58 तक समझो कि बाबा ने मुरली चलाई। उसके ऊपर भी क्लास कर सकते हैं, परंतु टॉपिक दिया गया है बाबा और ड्रामा। उसके कारण मैं अपना विचार प्रकट करूं आपके सामने, पहले एक सवाल पूछता हूं, सब ऑनेस्टली जवाब देना, ऑनेस्टली सच्चता के आधार पर। कल सुबह आप सब यहाँ क्लास में तो बैठे होंगे, क्लास में जब बैठे हुए होंगे शारदाबेन ने फिर अनाउंस किया, मालूम है ना शारदाबेन ने क्या अनाउंस किया, गुलजार दादी जी अहमदाबाद तक तो आ गए हैं, परंतु अहमदाबाद में उनका स्वास्थ्य जो है वो ऊपर नीचे हो गया है, इसके कारण वो आज नहीं आ सकेंगे। बराबर है, ऐसा ही कुछ सुना था ना आप सबने, हम सब ने सुना, और इसके कारण जो कैसा प्रोग्राम चलेगा योग करने का ये सब बारी बात है कि जो शारदा बहन ने सुनाई, निर्भय भाई ने भी उसके ऊपर सबको समाचार दिए है। तो मेरा एक प्रश्न ये है, आप ऑनेस्टली जवाब देना कि बाबा तो कहते हैं वहा बाबा वहा ड्रामा, वहा बाबा वहा ड्रामा, हर बात में कोई भी बात हो जाए उसके अंदर यही बात हमेशा पक्की रखने की है, वहा बाबा वहा ड्रामा। अब कल मैं आप फिर से कह रहा हूं ऑनेस्टली जवाब देना, जब शारदाबेन के मुख से सुना कि बाबा का प्रोग्राम आज नहीं हो सकेगा, बाबा मिलन नहीं हो सकेगा, आपके मन में क्या रिएक्शन आया? कईयों ने मेरे मिले थे, उन्होंने कहा मेरे को हमारे मन में तो यही रिएक्शन है, अरे हम इतनी मेहनत करके आए, कर्नाटक वाले कहाँ कहाँ दूर दूर से आते हैं, कई जगह से आए, इंदौर वाले आए अलग जगह से, भोपाल वाले अलग जगह से आए, कितने दूर दूर से कितनी मेहनत करके आए, और यहाँ आने के बाद बताया जाता है कि बाबा मिलन नहीं होगा, तो कईयों के मन में नेगेटिव विचार भी आए। मैं कईयों को जानता हूं जिन्होंने प्रोग्राम बनाए, और नजदीक के होते नहीं गुजरात के होते, वो तो कार में यहाँ आते हैं और कार में यहाँ आकर के मुरली सुन करके फिर ब्रह्मा भोजन कर करके चले जाते हैं। और जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि बाबा नहीं आने वाले थे, इन्होंने क्या किया, आने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। तो ऐसे आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको किसी को मन में आया वहा ड्रामा वाह बाबा इस प्रकार से आया क्या, ये क्या, अरे बाबा ये क्या हो गया ड्रामा में, आप क्यों नहीं आते हैं, हम तो आपको मिलने के लिए इतने दूर दूर से आए, साल में एक बार तो, वर्ष में एक बार तो मिलना होता है। हाँ, क्या मन में संकल्प चला, किसी के मन में ये चला कि वाह बाबा वाह ड्रामा, बाबा नहीं आते हैं तो भी उसके बारे में यही कहा जाए वाह ड्रामा। इस प्रकार से वाह ड्रामा का उद्गार रिएक्शन कहीं किसके मन में निकला कि वाह ड्रामा अच्छा हुआ। हाँ, जैसे हमारे गुजराती में नरसिंह मेहता एक कवि है, उसने उसकी वाइफ मर गई तो उसने कहा कि भलू थी भांगी झंझा सुखे भजसु से गोपाल, मतलब अच्छा हुआ समस्या दूर हो गई। इस प्रकार से नेगेटिव थॉट भी आ सकता है, पॉजिटिव भी थॉट आ सकता है, तो वाह ड्रामा कहेंगे तो पॉजिटिव थॉट आता है, वाह ड्रामा के बदले में अरे भाई ड्रामा, अरे क्यों हो गया, ऐसा हो गया, क्या हो गया, इतने दूर से हम आए हैं, क्या हो गया। परसों रात को हमको मालूम भी पड़ा कि कर्नाटक की बहनें जो है वो जाना चाहती है, अहमदाबाद जाएंगे, गुलजार दादी से रिक्वेस्ट करेंगे और गुलजार दादी की तबीयत अच्छी होगी तो उनको यहाँ लेके आएंगे। फिर कल सुबह तक तो परिवर्तन हो गया और कोई नहीं गया लेने के लिए। और हकीकत यह है कि वाह ड्रामा और वाह बाबा ये शब्द थियरी में रहता है, परीक्षा जब आती है तो परीक्षा में क्या होता है, रोज स्टडी तो करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, और रोज अभ्यास के बाद परीक्षा के टाइम पर फेल हो जावे तो क्या है। और गुजराती में एक घोड़े की रेस चलती है ना, तो रेस के टाइम पर ही घोड़ा नहीं चलता है, बाकी चलता रहता है तो उसका फायदा क्या। इस प्रकार से समय पर बाबा के मुख से और बाबा के कार्य के लिए वाह बाबा वाह ड्रामा हमारे दिल में निकलता है, नहीं निकला तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हम इतने अभी तक मैच्योर परिपक्व नहीं हुए हैं। जो भी ड्रामा अनुसार बातें बनती है उसको स्वीकार उसी रूप में करने के लिए हम तैयार हैं, बहुत बड़ी गुहे बातें हैं। और इसलिए मैं आज बाबा के लौकिक जीवन की बातें करना चाहता हूँ कि जिसके अंदर बाबा के सामने ड्रामा अनुसार अनेक परिस्थितियां आई, अच्छी भी आई बुरी भी आई, ऊपर नीचे सभी प्रकार की अवस्था की बातें आई, और बाबा ने किस प्रकार से आई हुई परिस्थितियां जो है उस समय पर अपनी स्थिति जो है परिस्थिति के अंदर अपनी स्थिति को संभालना ये बहुत बड़ी बात है। परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी और आएंगी, परंतु उसके अंदर अपनी स्थिति संभालना, एक रस अवस्था संभालना, स्थित प्रज्ञ जैसी अवस्था संभालना ये बहुत बड़ी बात है। और उस प्रकार की स्थिति हमारी नहीं बनी है, परिस्थिति में हमारी स्थिति एक रस अडोल अचल अचल अडोल एक रस नहीं रख सकेंगे तो फिर ज्ञान का लेने का सुनने का अर्थ क्या है। मैं हमेशा ही शिव बाबा को कहता था कि बाबा आपने एक बहुत बड़ी भारी गलती किया है। बाबा ने कहा अच्छा बच्चा तुम मेरी गलती बताता है, मैंने कहा हाँ बाबा आपकी गलती मैं बताता हूँ, आपने दो कान दिए हैं, दिए है ना सबको दिए है ना दो कान। हाँ तो हमने कहा बाबा दो कान दिए इसलिए इस कान में से जो ज्ञान जाता है ना यहाँ से सीधा ही निकल जाता है, और इस कान से जो ज्ञान जाता है अंदर यहाँ से निकल जाता है, अंदर जाता ही नहीं है। अगर एक कान होता तो क्या होता, ज्ञान अंदर जाता, हम परिपक्व बनते, ये परिपक्व बनते ही नहीं, आगे बढ़ते ही नहीं है, कोल्हू के बैल की माफी घूमते रहते घूमते रहते घूमते रहते, और कोल्हू के बैल को भी फुर्सत नहीं होती है, घूमता ही रहता है घूमता ही रहता है। इस प्रकार से हम घूमते रहते, प्रवृत्ति बात करते हैं पर तो परिवर्तन करते हैं, प्रोग्रेस हम करते हैं, परिवर्तन नहीं करते है, प्रोग्रेस नहीं करते तो फिर ज्ञान का पुरुषार्थ का अर्थ क्या। तो मैं ब्रह्मा बाबा के जीवन की बात करना चाहता हूँ, उनके जीवन को आप सबने भी पढ़ा होगा, आदिदेव किताब है और भी कई किताबों में ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में बातें बताई गई है। आप जानते हैं ब्रह्मा बाबा का जन्म जो है वो लौकिक जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ, मालूम है ना। परंतु क्या करना पड़ा, पहला परिवर्तन क्या आया ड्रामा के अनुसार, बाबा को हैदराबाद छोड़ना पड़ा और पहले पहले कारोबार सीखने के लिए बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे में कारोबार सीखा और फिर परिचय लोग थे उनके कारण उनके साथ में मिल करके कराची अपने कलकत्ता गए और कलकत्ते में जाकर के नौकरी शुरू किया। तो देखो पहला टर्न कहाँ हो गया, कराची। कराची से ड्रामा अनुसार बॉम्बे आना पड़ा। बॉम्बे से फिर ड्रामा अनुसार क्या हो गया, कलकत्ता जाना पड़ा। ड्रामा ने कैसा टर्न लिया, हाँ बाकी अपनी जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ है उसको छोड़ के जाना और आगे बढ़ना, और कई बार कई लोग नहीं कर सकते, नहीं आगे बढ़ने के लिए जा सकते, छोड़ नहीं सकते। बाबा ने वो भी छोड़ा, कलकत्ते जाकर के नौकरी शुरू किया। आपको मालूम है ब्रह्मा बाबा ने नौकरी जब शुरू किया डायमंड मर्चेंट्स के पास, ज्वेलरी मर्चेंट्स के पास, तो उनका पगार था, उनका पगार था 17 रुपया और 2% कमीशन। वो सेल्समैन थे, जो ज्वेलरी बेचते हैं ना उसको उसकी उसकी बिक्री करने के लिए जो निमित्त बनता है वो सेल्समैन जो है उसको 2% कमीशन मिलता है। 17 रुपया पगार। आप यहाँ सब बैठे हुए हैं और कहीं उसमें नौकरी करते हो गए, उसको 17 रुपया से तो ज्यादा महीने का पगार मिलता होगा। कोई यहाँ ऐसा है जिसका मंथली पगार 17 रुपये से कम हो, तो कोई नहीं है। 17 रुपये से ज्यादा होगा, मतलब उस समय जमाने में ब्रह्मा बाबा का पगार 17 रुपया प्लस 2% कमीशन। हमारे नारायण दादा ने हमको बताया कि बाबा का पहला वर्ष का एवरेज पगार 23 रुपया थी, एवरेज पगार, क्योंकि 17 रुपया पगार और कमीशन, तो सारे साल का कमीशन गिनती करे तो करीब 72 रुपीज पगार कमीशन मिला हुआ था। तो इस प्रकार से एवरेज पगार 23 रुपये का था। आप देखिए ड्रामा की बलियारी कैसी, बाबा की 23 रुपये के द्वारा, 23 रुपये की कमाई के द्वारा जीवन की शुरुआत की। फिर क्या हुआ, बाबा आगे बढ़ते रहे, बाबा आगे बढ़ते रहे और फिर बाबा और उसके साथ में काम करने वाला एक दूसरा था, मुनीम था उस कंपनी का, साई राम करके। साई राम और बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ने मिलकर के अपनी लक्की बाबू की दुकान शुरू किया, अपनी ज्वेलरी का धंधा शुरू किया। देखो वो ड्रामा का टर्न, कहाँ नौकरी थी, नौकरी से टर्न लेकर के कहाँ गए, कलकत्ते में ही अपनी दुकान खोल दी। आप समझे, बाबा सेल्समैन थे और वो जो साई राम जो था वो मुनीम था, वो हिसाब किताब लिखने वाला था, और इसके आधार पर बाबा ने भी धंधा आगे बढ़ाया और ड्रामा भी उनको अनुकूल रहा। अनेक लोगों का परिचय में आए, राजा महाराजाओं के परिचय में आए, नेपाल के राजा, उदयपुर के राजा, ऐसे बहुत से राजाओं के परिचय में आए और उसके परिणाम रूप बाबा का धंधा जो है बहुत ही अच्छा चला, कमाई भी काफी अच्छी बाबा ने किया। तो ये ड्रामा ने बाबा को बहुत अच्छा आगे बढ़ने का, धन कमाने का रास्ता बताया। वो अच्छा है, ड्रामा का पार्ट अच्छा था, परंतु साथ के अंदर ही बाबा ने क्या हो गया आपको मालूम नहीं होगा। बाबा के दो बच्चे और तीन बच्चियां थी, तो एक बड़ा बच्चा था किशनचंद। किशनचंद की शादी की बात आई तो बाबा ने दादी ब्रिजेंद्रा जो है उसके परिवार को देखा हुआ था, तो दादी बाबा ने नक्की किया था कि ये इसका नाम राधिका थी, दादी ब्रिजेंद्रा का, वो राधिका जो है ना उसकी शादी मेरे बड़े बेटे किशनचंद के साथ होनी चाहिए। उसके लिए क्या किया बाबा ने, उस ब्रिजेंद्रा दादी का भाई को कलकत्ते बुलाया, वो किस काम के आया था तो अपने पास भी बुलाया, भाई हमारे कराची का हैदराबाद का है उस प्रकार से, और उन्हें दुकान बताई, दुकान के अंदर ज्वेलरी बताई है, इस राजा के लिए ज्वेलरी बनी है, इस राजरानी के लिए बन रही है, इस प्रकार से इतनी चीजें अच्छी बताई। और दूसरी आप सबको मालूम नहीं होगा बाबा के जीवन की बात, बाबा डायमंड खरीदते थे परंतु उसकी टर्म्स ये थी, उसका पेमेंट जो है 6 से 12 महीने के बीच में देने का। आप समझे, धंधा के अंदर जो व्यापारी है उसको मालूम है हम पैसा जल्दी नहीं मिलता है, कभी 6 महीने के बाद मिलता है, कभी 8 महीने के बाद मिलता है, कभी 12 महीने के बाद, तो 6 महीने से 12 महीने के बीच में देना होता था। तो बाबा क्या करते थे, बाबा जो बाबा का ज्वेलरी जो है ना फटाफट बिक्री होती थी, ज्वेलरी जो है ना बनी और बनने से पहले ही उसके लिए ऑर्डर आ जाता था, अर्थात ऑर्डर पर बाबा ज्वेलरी बनाते थे। तो परिणाम रूप क्या हो गया कि जो डायमंड जो थे उसकी तो बिक्री 15 दिन में हो गई और पैसा आ गया, और पैसा देने का जो था मालिक जिसे खरीद दिया डायमंड उसको 1 साल के बाद देना था। तो बाबा ने क्या किया, पैसा हुंडी पर ब्याज पर देना शुरू किया। आप समझे मेरी बात को, जो व्यापारी हो गया उसको मालूम होगा, बाबा ने हुंडी पर ब्याज पर पैसा देना शुरू किया। इसके कारण बाबा की आबरू जो होती है, प्रेस्टीज जो होती है, बहुत बढ़ गई, क्योंकि बाबा हुंडी पर पैसा देते थे और लाखों रुपया देते थे। इसका मतलब ये हो गया कि सबको ऐसा लगा कि ये तो बहुत पैसे वाला है। आप समझे ड्रामा ने कैसे मदद किया बाबा का एक इमेज बिजनेस के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर बढ़ाने के लिए। ड्रामा अनुसार डायमंड का पैसा 1 साल के बाद देने का, और पैसा कैश में जल्दी आ जाने का, उसके बाद हुंडी पर 3-3 महीने की हुंडी होती है, जिन्होंने बिजनेस किया हुआ है उनको मालूम होगा, 3-3 महीने की हुंडी के पैसा देते थे। और इसके कारण कलकत्ते के बिजनेस सर्कल में बाबा का बहुत 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 नाम बढ़ गया। परिणाम रूप क्या हो गया, तो बाबा की इमेज भी बढ़ गई, सोशल इमेज भी बढ़ गई। फिर आदि बिजेंद्रा का भाई ने देखा बहुत ही अच्छी कारोबार होती है, इसने जिसने जा करके अपने पिताजी जो है वश्यामल आसुमल करके हैदराबाद की सिंधी परिवार की बहुत बड़ी नामी ग्रामी कंपनी थी, तो उसकी बेटी थी राधिका बहन, तो उनके साथ उसने नक्की किया। उसके भाई ने बताया कि मेरी बहन का अपने पिताजी को जाकर के बोला कि मेरी बहन की शादी इनका लड़का जो है दादा लेखराज का कृष्णचंद, जिसको शॉर्ट में किशु कहते थे, किशु भाई के साथ होनी चाहिए, शादी उनके साथ हुई। इस प्रकार से बाबा के जीवन में क्या क्या परिवर्तन अच्छा हुआ, बहुत शुरू में तो अच्छे रहे बाबा के जीवन में अच्छे आए, परंतु उसके बाद क्या हुआ, बाबा के तन में शिव बाबा की प्रवेशता हुई। मालूम है ना, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, श्री बाबा की प्रवेशता हुई, उसके कारण क्या हो गया, ब्रह्मा बाबा ने अपना पार्टनर जो बाबा तो बनारस गए थे, बनारस से हैदराबाद आए, और हैदराबाद में आकर के बाबा ने अपना ज्ञान देने का कारोबार शुरू किया। बाबा का खुद का मकान था जसोदा भवन, उस जसोदा भवन के अंदर इन्होंने अपना क्लास शुरू किया, 10x10 के कमरे में क्लास शुरू किया। फिर संख्या बढ़ी तो एक दीवार तोड़ करके 20x10 का क्लास हुआ, फिर एक दीवार तोड़ी तो 30x10 का क्लास हुआ, फिर ज्यादा संख्या बढ़ गई तो फिर हर कंपाउंड के अंदर बाबा ने क्लास कराना शुरू किया। जिसके फलस्वरूप जिन्होंने दादी प्रकाशमणि का जीवन चरित्र पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि दादी प्रकाशमणि बाबा जब वहां पर कंपाउंड में बैठ करके मुरली चलाते थे तब दादी प्रकाशमणि पहली बार आई। तो इस प्रकार से कंपाउंड के अंदर कारोबार हुआ, शुरू हुआ, और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया, मालूम है ना सिटी बजी बाबा को रेल का राही आगे बढ़ गया। इस प्रकार से बाबा ने खुद ने गीत भी बनाया था, अपने पार्टनर को लिख दिया। देखो ड्रामा कैसा टर्न लेता है, धंधा के अंदर से बाबा ज्ञान सुनाने के कारोबार में आ गए, कितना ड्रामा ने टर्न लिया। और बाबा ने अपने पार्टनर को लिख दिया कि तुमको जो देना है मुझे दे दो, मैं तो यहाँ पर बैठा हुआ, मैं अभी कलकत्ता नहीं आऊंगा। तो ड्रामा अनुसार उनके पार्टनर ने, आप जानते हैं कि जिसके हाथ में पैसा होता है उसके ही वो अपना पैसा ज्यादा ले लेता है, तो उसने क्या किया, अपने साईराम पार्टनर जो था उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे तो डायमंड बेचने को आता ही नहीं है, मेरा पहचान नहीं है डायमंड क्या होता है, कैसा होता है, कितने कैरेट का होता है, क्या होता है वो सारा। इसलिए उसने क्या किया, ब्रह्मा बाबा को लिखा कि मेरे अपने जो धंधे में जो कैश है, अगर कैश बैंक बैलेंस है और जो पैसा उगराणी में बिक्रिया हुआ माल है उसका पैसा आने वाले है वो सब मैं ले लेता हूँ। और आपके पास आपको मैं स्टॉक में जो भी डायमंड है और जो भी डायमंड ज्वेलरी बन रही है यहाँ तो जेवर बन रहे हैं गोल्ड सिल्वर आदि जो भी है वो सब मैं आपको दे देता हूँ। एक इसी को एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साई राम की ये चीटिंग थी, पैसा खुद ने ले लिया और वैल्यू ऑफ जो ज्वेलरी जो बाबा को मिली स्टॉक में वो उसके कम थी। बाबा ने कहा जो भी है ड्रामा है, तो बाबा ने कम दाम वाली ज्वेलरी ले लिया, साई राम को भले पैसा दे दिया, बाबा ने ड्रामा कर करके छोड़ दिया। हम लोग बिजनेस में होते तो हम क्या करते, बराबर जाते और कहते कि तुम्हारा इतना आधा हमारा इधर आधा ऐसा लड़ाई झगड़ा होता था, कोर्ट में जाते। आजकल कोर्ट के अंदर 60% केसेस जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर ही होता है कि मेरी प्रॉपर्टी है तेरी प्रॉपर्टी है, मेरा धंधा का बिजनेस है मेरी गुडविल है, इस प्रकार के धंधे के अंदर झगड़े की बातें होती। बाबा ने ड्रामा को एक्सेप्ट कर दिया और फायदा क्या हुआ आप सबने सोचा नहीं होगा, बाबा को क्या फायदा हुआ। बाबा के पास डायमंड आ गए तो बाबा ने क्या किया, डायमंड अपने पास रख दिया स्टॉक में और जैसे जैसे जरूरत पड़ी इस प्रकार से डायमंड बेचते गए। कलकत्ते में जाकर के दादा विश्वकिशोर जो है वो जाकर के कलकत्ते में बेचता था बाबा ड्रामा अपने डायमंड। और क्या हो गया, मैं दाम तो बढ़ते रहते हैं, हर चीज के दाम बढ़ते रहते थे। बाबा का उस जमाने में जो था 9 रुपये की एक गिनी थी, उसको बढ़ते गई बढ़ती गई, आजकल आप जानते हैं कितने 22-25 हजार रुपये की एक गिनी हो गई है, एक मोहर जो होती है सोना मोहर। तो इस प्रकार से दाम बढ़ते गए इसके कारण क्या हो गया, जब बंटवारा हुआ तब बाबा के हिस्से में कम अमाउंट की वैल्यू और स्टॉक मिला, परंतु दाम आस्ते आस्ते बढ़ता गया और जो उसका साई राम जो था उसके पास तो कैश में रही तो वो तो दाम बढ़ेगा तो कैश का तो कुछ नहीं फायदा होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। पर चीज जो थी बाबा के पास डायमंड के रूप में जो चीजें जो थी उसका दाम बढ़ता गया। तो देखो ड्रामा ने कैसा टर्न लिया, साई राम ने अपने पास कैश सब रख दी तो उसका ड्रामा अनुसार नुकसान ही होता रहा, क्योंकि दाम बढ़ते गए पैसा पैसा ही रहा। और यहाँ ब्रह्मा बाबा के पास डायमंड का कैसा बढ़ता गया दाम बढ़ता गया और उसके परिणाम रूप क्या क्या हो गया, कारोबार में आगे बढ़ते गए और बाबा के उस धन के आधार पर ये यज्ञ की स्थापना भी हुई और 250-300 या 400 पहले 400 थे जैसे भाई बहन आए उनके साथ में भी बैठ करके उनकी पालना का कारोबार किया। कोर्टों में केस भी हुआ, साधु वासवानी आदि ने जो भी है बाबा के आगे आकर के वहां पर पिकेटिंग किया तो क्या किया, बाबा ने कहा ठीक है बच्चे जो भी है पिकेटिंग कर, कोर्ट में केसेस चले, मम्मा को भी कोर्ट में जाकर के गवाही देनी पड़ी। तो इस प्रकार से कोर्ट में केसेस चले, सब कुछ होते हुए बाबा ने एक्सेप्ट किया ड्रामा जो है उसके आधार पर जो है कोर्ट केस में कहीं में हार भी गए। जो बहने बाबा के पास घर बार छोड़ करके आई थी वो 18 साल से जो बहने कम थी उसको उनके घर में वापस भेजना पड़ा और जो 18 साल से ऊपर की थी उनको अपने घर में मतलब यज्ञ के अंदर शामिल किया गया। तो इस प्रकार से कोर्ट के अंदर खट्टी मीठी बातें बनी, 18 साल से कम वाली बहने जो है उनको घर पे भेजना पड़ा, 18 साल से ऊपर की बहने जो थी उसको ड्रामा अनुसार रखना पड़ा। तो ये भी एक ड्रामा का टर्न कि कहीं बहने गई कहीं बहने रह गई। मातेश्वरी को भी बाबा ने देखा और बाबा ने परख लिया और उसके साथ बातचीत किया और मातेश्वरी ने अपना जीवन समर्पित कर दिया बाबा के लिए और बाबा ने एक ओम मंडली करके कम्युनिटी बनाई और उसका चेयरपर्सन जो है मातेश्वरी को रखा। इस प्रकार से बाबा का कारोबार चला। फिर क्या हुआ आप जानते हैं, फिर क्या हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ। उसके पहले एक बात बताना भूल गया, हैदराबाद में थे हैदराबाद के जो हिंदी सिंधी कम्युनिटी आदि बहुत तंग करती थी, तो इसलिए बाबा ड्रामा अनुसार ड्रामा को एक्सेप्ट करते हुए हैदराबाद से कराची आए, आप समझे। संस्था वहां पर हैदराबाद में अच्छे जैसे थी, बाबा का खुद का मकान था और सब कुछ अच्छा, सब प्रकार के शासन सुविधा थी। बाबा वो सब सुविधा को छोड़ करके 37-39 के ऐसे कुछ साल में कराची आ गए। बाबा ने क्या किया, बहुत अच्छी बात की कराची में, कराची में आकर के कोई भी मकान अपना खरीद नहीं किया, ड्रामा अनुसार कोई भी मकान अपना खरीद नहीं किया, किराए पर रहे। हैदराबाद में जो जसोदा भवन था उसको भी बेच दिया, यहाँ किराए पर रहे। इसके कारण क्या हुआ, जब कराची छोड़ करके भारत आए तब किराए का मकान था इसलिए छोड़ दिया, उसका नुकसान भी नहीं हुआ, छोड़ दिया भाई चलो आपका मकान है आप वापस ले लो। इसके कारण अगर खरीदी किया हुआ मकान होता तो क्या होता, मकान छोड़ना पड़ता, उसका पैसा भी चले जाते। तो ये भी ड्रामा ने बाबा को कैसे मदद किया कि हैदराबाद में खुद का मकान था परंतु कराची में किराए के मकान, क्लिफ्टन में रहे, सोल्जर बाजार में रहे है, सबको आपको इतिहास में मालूम होगा, आदिदेव किताब पढ़ना। तो उसके कारण क्या हो गया, कराची में आना पड़ा, वो भी ड्रामा का टर्न हो गया। फिर कराची के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी हो गई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बाबा को कहा कि आप यहाँ रहो, आप तो देवता हो, आप तो खुदा के नूरे रतन हो, आप यहाँ ही रहो। परंतु जो बहने माताएं जो सरेंडर हुई थी उनके रिश्तेदार जो थे, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं आपको हिंदुस्तान आना पड़ेगा। उसमें दीदी मनमोहिनी जो थी, उसका चाचा जो था मूलचंद चाचा ने ऑफर किया ब्रह्मा बाबा को कि आपका कराची से हिंदुस्तान आने का स्टीमर में बुक किया, ओखा तक स्टीमर में आया, ओखा से फिर स्पेशल ट्रेन में आबू आए, फिर आबू में ऊपर गए, ये सारा खर्चा जो है मूलचंद दादा ने कहा कि मैं करूंगा। परंतु ड्रामानुसार वो यहाँ आ गए, आने के बाद मूलचंद काका ने कह दिया ये तो मैंने आपको बुद्धू बनाने के लिए ही काम किया था, मैं आपको एक पैसा देने वाला नहीं हूँ। आप समझे कितना बड़ा ड्रामा अनुसार बाबा को धक्का लगा हुआ होगा। हाँ, कराची से कराची छोड़ने तो नहीं जाते थे, पर तो रिश्तेदारों के कहने के आधार पर आना पड़ा, और आने के समय पर जो खर्चा हुआ, खर्चा मूलचंद काका ने मना किया कि मैं नहीं दूंगा। आप और कोई होता तो कितना दिल में धक्का लगता, अरे ये क्या हो गया, ऐसा हमारे साथ धोखा किया, हमारे इतना हजारों का खर्चा हुआ, स्टीमर में आए कराची से, स्टीमर में बैठे ओखा आए, ओखा से ट्रेन में आए, इन सब खर्चा जो है वो खर्चे का तो उसने दिया ही नहीं, तो भी बाबा ने एक्सेप्ट कर लिया। कराची से हैदराबाद बॉम्बे आए, अरे अपने आबू में आए, आप जानते हैं शुरू के अंदर क्या हुआ, ड्रामा के अंदर ड्रामा ने क्या क्या परीक्षा लिया बाबा की और अपने दैवी परिवार की, क्योंकि आबू में ठंड बहुत थी, दिसंबर महीने में आए गए थे शायद, और कराची में तो समुद्र किनारे था इसलिए ठंड नहीं थी, यहाँ आकर ठंडी थी, और फिर क्या था, यहाँ का पानी जो है मिनरल वाटर था, भारी था, तो कईयों की तबीयत बिगड़ी, कई क्या क्या हो गया, किस प्रकार से चलता रहा, बाबा ने यज्ञ को कैसे संभाला, ये भी बहुत बड़ी बात है। बीमारियों के पेपर के समय पर ड्रामा अनुसार जो भी बीमार पड़े इन सबको बाबा ने संभाला, और सबको अच्छी से तबीयत उसकी अच्छी करके बाबा ने माउंट आबू में रहने का प्रबंध किया। इतने में क्या हुआ ड्रामा प्लान अनुसार ब्रिज कोठी जो है वो ब्रिज कोठी का मकान सरकार का हो गया था, क्योंकि राजा का था और राजा की सारी प्रॉपर्टी सरकार के पास, सरकार ने ले लिया था सब राजाओं की प्रॉपर्टी, तो उन्होंने कह दिया कि मकान खाली करो, ब्रिज कोठी का मकान खाली करो। उस टाइम पर तो सहज रीति से मिल गया भरतपुर कोठी और दूसरी एक थी कोई कोठी, वो दो मकान मिल गया, और वो शिफ्ट वहां पर हो गया। परंतु ये भी ड्रामा अनुसार एक घर छोड़ना दूसरा घर लेना, वो ड्रामा का परीक्षा तो आती है ना, उस हम सबके सामने परीक्षाएं आती है इस प्रकार की, घर बार छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से बाबा को ब्रिज कोठी छोड़ना पड़ा, भरतपुर कोठी और कोटा हाउस, दूसरा मकान का नाम था कोटा हाउस, वहां जाके रहना पड़ा। फिर परीक्षा आई ड्रामा अनुसार, फिर ड्रामा अनुसार परीक्षा आई। उस जमाने में राजस्थान सरकार का रेवेन्यू मिनिस्टर था मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो रेवेन्यू मिनिस्टर था, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बना राजस्थान का। मोहनलाल सुखाड़िया ने नोटिस दिया कि ये भरतपुर कोठी और कोटा हाउस जो है ना, वो राजस्थान सरकार को वापस चाहिए। क्यों वापस चाहिए? वहां पर गर्मी के दिनों में चीफ मिनिस्टर को रहने का मकान बनाना है, उसको रिनोवेशन करके कि वहां पर गर्मी के दिनों में चीफ मिनिस्टर आएगा वहां रहेगा, इसलिए उन्होंने नोटिस दिया खाली करो खाली करो खाली करो। दादा विश्वकिशोर दो बार जाके आए, इन्होंने कहा ठीक है आपको मैं देता हूं टाइम, दो महीना दो महीना दो महीना ऐसे करते रहे। और फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर खाली लास्ट डे था, 31 दिसंबर के पहले अगले दिन 30 दिसंबर को दादा विश्वकिशोर अहमदाबाद आबू गए, राजस्थान में जयपुर गए एक्सटेंशन डील के लिए। देखो कितनी बड़ी भारी प्रॉब्लम, हाँ कि 31 दिसंबर कल खाली करना है, कल खाली करना है और आज 30 तारीख को दादा विश्वकिशोर जाकर के कहते हैं कि उसके मकान को एक्सटेंशन करके दो। कितनी बड़ी भारी समस्या है, आपको अपना घर आप देखो जो रहते होंगे, जिनको मालूम होगा किराया के मकान होगा, और कई सेंटरों के ऊपर हमारी बहनें जो है कई आठ आठ दस दस स्थान बदलती रहती है, क्योंकि छोटे शहरों में मकान ज्यादा टाइम के लिए नहीं देते हैं, 11 महीना ऐसा ही देते रहते हैं। तो इस प्रकार से दादा गए 30 तारीख को, तो गवर्नर मोहनलाल सुखाड़िया ने कहा कि भाई हमारे तो चीफ मिनिस्टर के लिए ये मकान खाली कराना है, इसलिए हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं, कल 31 दिसंबर को आप खाली नहीं करके देंगे तो मैं सिरोही का कलेक्टर को फोन करके बोलूंगा और आपको आपके पास आकर के आपका सामान आदि जो है ना सब रास्ते पर फेंक दूंगा। देखो कितना बड़ा ड्रामा अनुसार परीक्षा आई। उसने कहा ठीक है दादा विश्वकिशोर ने कहा मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाबा ने क्या किया, बाबा ने देखो कैसी युक्ति किया, ड्रामा के अंदर रास्ता कैसे निकालना चाहिए, और लोग जो है मूंझ जाते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, समझ सोच नहीं सकते क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। बाबा ने क्या किया, सोच समझ के काम कराया। बाबा ने विश्वकिशोर दादा को कहा कि आप पटना में फोन करो, वहां पटना में बाबा का एक बच्चा है हीरालाल जालन करके, हीरालाल जालन करके बाबा का बच्चा है, उसको बुलाओ पटना से दिल्ली। वो हीरालाल जालन जो है वो भी बिहार का है, और राजेंद्र प्रसाद जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो भी वहां के ही थे, तो इसलिए उसको बुलाओ और वो राष्ट्रपति के साथ मिले और राष्ट्रपति कागज दे वो मोहनलाल सुखाड़िया के ऊपर कि इनको 2 महीने का एक्सटेंशन मिले। देखो कितनी विकट परिस्थिति थी, इतने 250-300-400 जितने भी बहन भाई होंगे सबको कहाँ रखे, अगर दूसरा प्रबंध नहीं मिला और कलेक्टर का एक आदमी आकर के 31 दिसंबर को सारा सामान नीचे रास्ते पर फेंक दे तो कहाँ रहेंगे रात को, कहाँ कहेंगे। बाबा ने उसको कहा हीरालाल जालन को, दादा विश्वकिशोर ने हीरालाल जालन को फोन किया। दूसरे दिन सुबह हीरालाल जालन भाई जो है एयरपोर्ट में पटना से आए दिल्ली, और वो दादा विश्वकिशोर जालन के रिश्तेदार जो थे उसकी कार में बैठ करके राष्ट्रपति भवन गए। राष्ट्रपति भवन में जाकर के हीरालाल जालन ने कहा कि हमको तो राष्ट्रपति को मिलना है। तो देखो राष्ट्रपति के पीए ने क्या बोला, अरे कोई राष्ट्रपति कोई मामूली आदमी है क्या, ऐसा नहीं मिल सकता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि ऐसे नहीं मिलेगा। तो उसने कहा मेरा तो राजेंद्र बाबू जो है मेरा दोस्त है, मुझे उसकी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, हम तो बचपन के दोस्त है साथी से। तो गवर्नर उसके पीए ने कहा वो तो आप बचपन में होंगे, अभी तो आपका दोस्त राष्ट्रपति बन गया है। देखो परीक्षाएं कैसे आती है ड्रामा अनुसार। तो राधा विश्वकिशोर ने कहा चलो हम यहाँ बैठते हैं, देखिए रास्ता कुछ निकल जाता है। तो इतने में बैठे हुए थे 10-15 मिनट हुई तो राजेंद्र प्रसाद अपने अशोका हॉल है, अशोका हॉल से निकल करके डाइनिंग में खाना का नाश्ता करने के लिए जा रहे थे। इन्होंने हीरालाल जालन को देखा, देखो ड्रामा कैसे है, कैसा वंडरफुल ड्रामा है। आप सब ड्रामा को इस प्रकार से जैसे बाबा ने बस एक्सेप्ट किया, वहा ड्रामा वहा ड्रामा वहा ड्रामा, इस प्रकार से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। कैसी परिस्थिति थी। हाँ राजेंद्र प्रसाद ने हीरालाल जालन को देखा, अरे हीरालाल तुम यहाँ क्यों बैठा है। तो क्या उसने कहा कि मैं क्या करूँ, आपका पीए मुझे अंदर मिलने नहीं आने देते हैं। नहीं नहीं तुम अंदर आओ अंदर आओ। तो इसलिए हीरालाल जालन को और विश्वकिशोर दादा को राष्ट्रपति ने अंदर बुलाया और कहा कि मैं नाश्ते पे जा रहा हूँ, चलो तुम नाश्ता करो। डाइनिंग टेबल पर बैठे तो उन्होंने कहा नाश्ता करो। तो हीरालाल जालन ने क्या कहा कि मेरा काम तुम दोस्त है, तुमसे बात करते, आपसे बात नहीं करते, दोस्ती में तुम होता है ना, आप तो बड़े और लोगों को कहा जाता है, कहा तुम्हारा तुम मेरे काम कर दो तो मैं नाश्ता खाऊं। तो क्या काम है। तो क्या ऐसे ऐसे हमारा जो पिताश्री जो है उनको कोटा हाउस जो है वो खाली करने के लिए मोहनलाल सुखाड़िया ने बोला है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कागज लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दे दो और एक्सटेंशन 2 महीने का करा दो। उसने क्या क्या बड़ी बात है। और नाश्ता करने से पहले उसने अपने पीए को बुलाया और राजेंद्र प्रसाद ने कागज डिक्टेट करा दिया। फिर इन्होंने कहा अभी तो नाश्ता करेंगे ना, तो कहा अभी मैं नाश्ता करूंगा। नाश्ता किया, इतने में कागज टाइप होकर के आ गया और राजेंद्र बाबू ने उसके ऊपर साइन किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनसे क्या कागज लेकर के दादा विश्वकिशोर और ये जो हीरालाल जालन थे वो उनके रिश्तेदार की कार में दिल्ली से जयपुर आए। देखो कितना ड्रामा का भाभी है। 5 बजे जयपुर की ऑफिस बंद हो जाती है और वो बहुत मेहनत करके पहुंचे, 4:45 बजे पहुंचे। कितना ड्रामा ड्रामा ने परीक्षा दिया। 4:45 बजे पहुंचे और इन्होंने अंदर चिट्ठी भेजी विश्वकिशोर दादा ने। तो गवर्नर मोहनलाल सुखाड़िया ने बुलाया अंदर आओ। वो अंदर गए, मोहनलाल सुखाड़िया ने धमकी दिया आपने खाली किया कि नहीं किया, अगर नहीं किया है तो उसने अपने पीए को बोला कि सिरोही के गवर्नर कलेक्टर को बोलो फोन लगाओ मैं उनसे डायरेक्शन देता हूँ। जितने में राधा विश्वकिशोर ने कहा कि आप कलेक्टर को भले फोन करो और आपका एक दोस्त जो है उसका एक पत्र आया है आप उसको पढ़ो। तो कहा अभी तो भगवान आएगा ना, भगवान आएगा तो भी मैं उनकी बात नहीं मानने वाला हूँ। तो राधा विश्वकिशोर ने कहा कि आप जैसे छोटे आदमी के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है, आपके लिए तो कोई साधारण आदमी भी पत्र लिख के देगा ना वो भी सफिशियंट है, आपको इतना महान नहीं है कि भगवान आपके लिए आवे। तो वो तो चुप हो गया। उसने कहा ठीक है आपके दोस्त को बुलाओ। हीरालाल भाई अंदर गए, हीरालाल भाई ने कागज दिया कि आप मेरे एक दोस्त जो है उसने आपके ऊपर पत्र लिखा हुआ है, पत्र लिखा हुआ है। तो उसने खोल के देखा कल एनवेलप के ऊपर ही था फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन दिल्ली। तो सोचने लगा कि प्रेसिडेंट ने क्या लिखा हुआ होगा। तो प्रेसिडेंट उसने कागज खोला तो उसमें लिखा था कि भाई मोहनलाल सुखाड़िया मेरे खास दोस्त है, हीरालाल जालन उनकी संस्था का जो है उनको मकान खाली करने के लिए आपने ऑर्डर दिया है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 महीना का एक्सटेंशन दे दो। देखो कैसे होता है, 4:45 बजे और 5 बजे खाली करने का है और उसके पहले 2 मिनट 3 मिनट पहले ही राष्ट्रपति का पत्र उसके हाथ में जाता है और वो कहता है कि अरे आप लोगों ने तो अब राष्ट्रपति तक गए, तो हीरा विश्व किशोर दादा ने कहा कि हम तो राष्ट्रपति तक भी गए, आपके लिए कि भगवान तक जाने की जरूरत नहीं है, आप इतने महान नहीं है और इतना कार्य बड़ा नहीं था। तो कहा ठीक है, फिर उसने कहा 2 महीना एक्सटेंशन रखो और 2 महीना एक्सटेंशन कर। बाबा के पास वो लेके जयपुर से फिर कार में हम आबू आए और आबू में सबको बताया, हमारी बहनें दादियां जो भी है उसको सबको कहा, भारत हाउस और कोटा हाउस, कोटा भरतपुर कोठी और कोटा हाउस में कि सबको कहो, उस टाइम पर पांडव भवन ही मिलता था, बाकी कुछ नहीं मिलता था। और आप सबको खूब विचार आप समझो, पांडव भवन जो था ना वो जैसे साधारण मकान था, थोड़े कमरे थे, 2 लॉन टेनिस का कमरा था, ज्यादा जहाँ दादी ईश्वर दादी के ऊपर ऑफिस थी वहां पर घोड़ों को पानी पीने के लिए रखा हुआ था, वहां घोड़े पानी पीने के लिए आते थे, और बाजू में घोड़ों का तबेला था, वहां घोड़ा जहाँ स्टेबल जिसको होते वहां रखने का, ऐसी जगह थी किसी को भी पसंद नहीं आएंगी, ऐसी जगह थी। तो बाबा ने देखो ड्रामा अनुसार बाबा ने क्या किया, उसका और कुछ हो नहीं सकता, इसलिए बाबा ने किराए पर वो मकान ले लिया पांडव भवन, और फिर सबको शिफ्ट किया कोटा हाउस से और भरतपुर कोठी से पांडव भवन। हमारी शील दादी कहती थी हमको कि रमेश हम लोग जब पांडव भवन आए तो हम तो पहले 2 दिन तो रोते ही रहे, अरे बाबा हमको कहाँ लेके आए, बाबा हमको कहाँ लेके आए, बाबा हमको कहाँ लेके आए। बाबा ने सबको प्रॉमिस दिया था, बाबा ने लिखत में प्रॉमिस दिया बहनों को कि कोई अच्छा भवन मिलेगा मैं वहां शिफ्ट करूंगा, तब तक आप सबको यहाँ ही रहना पड़ेगा। देखो कितनी परीक्षाएं, रहने करने के बारे में भी कितनी परीक्षाएं आई। उसके बाद तो आप जानते हैं, इतिहास जानते हैं कि बाबा ने मुर्गियां चलाई और बाबा ने बहनों को सेवा के लिए बाहर गांव निकाल के भेजा, सब कुछ हुआ। इतने में ही आपको मालूम होगा पांडव भवन में ही परीक्षा आई, गरीबी का पेपर आया, गरीबी का पेपर आया। आप समझो आपके सिर पर 300 लोगों को रोज भोजन कराने का, खान पान का, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, रात को डिनर खिलाने का, उनका पालना का सारा खर्चा आपको उठाना है, आपके पास पैसा नहीं है। आप समझो कितनी बड़ी परीक्षा आई, पैसा खाली, खिस्सा खाली। हाँ इस प्रकार से ऐसी बात में बाबा ने क्या किया, अब आपको मालूम होगा ना, गरीबी का पेपर हमारे किताबों लिखने वालों ने गलत लिख दिया है गरीबी का पेपर के बारे में। मैंने बाबा को पूछा था कि गरीबी का पेपर कितना घंटा रहा, कितना दिन रहा, कितना मास रहा। बाबा ने कहा बड़ी गरीबी का पेपर सिर्फ 6 घंटा ही रहा था, ड्रामा अनुसार गरीबी का पेपर 6 घंटा ही रहा था। बाबा ने कहा बाबा कैसे, तो बाबा ने कहा कि 9 बजे मैं नाश्ता करने के लिए गया तो पतली दाल थी और रोटी थी, सब्जी तो कुछ थी नहीं, तो बाबा को थाली में दिया। बाबा ने कहा, बाबा ने बच्चों को पूछा, भोली दादी भंडारण थी, भोली भंडारण थी, उसको पूछा कि बच्ची बच्चों ने नाश्ता किया, तो भोली बहन चुप रही। देखिए कैसी परीक्षा आई थी, ड्रामा कितना पेपर लेती। जैसे आपको मालूम होगा ना राजा हरिश्चंद्र और तारामती, हरिश्चंद्र और तारामती का व्याख्यान जिन्होंने देखा होगा सुना होगा, कैसे हो गया, उसका खुद का बेटा जो है मर गया, सांप ने काटा और तारामती उसके बेटे को वहां पर अग्नि संस्कार के लिए लाई। हरिश्चंद्र ने कहा कि आप पैसा नहीं देंगे तो आप मेरा आपका बेटा जो है मेरा बेटा है उसका अग्नि संस्कार नहीं हो सकता है। ऐसे ही नल और दमयंती का व्याख्यान महाभारत में पढ़ो, कैसे कैसे परीक्षाएं आती है। इस प्रकार से बाबा के सामने भी कैसी परीक्षाएं आई। बाबा ने भोली दादी ने कहा कि बच्चों ने खाना नहीं खाया है, उनका कोई है नहीं, कोई चीज भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, कोई हर्जा नहीं है। देखो बाबा डिप्रेस नहीं हुए, इधर ड्रामा की परीक्षा के टाइम हम लोग क्या करते, भूल जाते हैं। बाबा ने मुरली में भी कहा हुआ है कि समय पर ही हम ज्ञान भूल जाते हैं। हमारा हम वही है, हम वो पांडवों में कर्ण है ना, नाम सुना होगा कर्ण, अभी भी टीवी में सीरियल आती है सूर्य पुत्र कर्ण, उस प्रकार से उसको समय पर ही ज्ञान भूल गया। इस प्रकार से हम सब कर्ण है पांडवों के, कि हम लोग को समय पर ज्ञान भूल जाता है, और इसके परंतु बाबा को समय पर ही ज्ञान अपनी अवस्था को संभालना, अचल अडोल अवस्था जो संभालना, वो बाबा की महान दैवी भूमिका थी। बाबा ने उठ के अंदर कमरे में, बाबा के कमरे में आ गए, ऊपर आपने बाबा का कमरा तो देखा ही है, कई लोग जाते हैं, बाबा के चांदी के स्टार लाइट भी रखी हुई है, तो वहां पर वो गए। बाबा ने विश्वरतन दादा को बुलाया, विश्वरतन दादा को कहा कि जाओ बच्चे आज की पोस्ट लेके आओ। पोस्ट जो है ना रोज सुबह 10 बजे आती थी, तो बाबा ने कहा जाओ, 9 बजे तक नाश्ता का था, उसके बाद ऐसा हुआ, तो इसके कारण बाबा दादा विश्वरतन पोस्ट लेके आया। पोस्ट लेके आए, बाबा ने कहा अच्छा पोस्ट खोलो। पोस्ट खोला तो देखो ड्रामा कैसे मददगार बनता है। पोस्ट खोली तो एक लिफाफा में 200 रुपया निकले।